का था, रूह वही रूप नया।
आप सुनने जा रहे हैं कहानी परिवर्तन और इसे लिखा है गी दमोपासा ने। वो लड़की उन रूपमती आकर्षक लड़कियों में से एक थी जो दुर्भाग्य के प्रहार के कारण एक स्टेनो के घर पर जन्मी थी। उसके पास दहेज हेतु कोई धन, कोई उम्मीद, नामचीन होने का एक भी ऐसा जतन या विकल्प नहीं था कि उसे किसी प्रसिद्ध या अमीर व्यक्ति द्वारा देखा जाए और पसंद किया जाए। उसने स्वयं ही एक सामान्य स्टेनो से शादी कर ली जो लोक शिक्षण मंत्रालय में सेवक था। वो बेहद सरल स्वभाव की थी, इतनी सरल कि खुद को भी नहीं चाह सकती थी, और औरतें किसी जाति, वर्ग, आकर्षण या सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी नैसर्गिक प्रवृत्तियों, उसकी नारीजन्य व्यवहार कुशलता और नारीत्व के गुणों से परखी जाती हैं कि वे किस समूह से रिश्ता रखती हैं। वही गुण उन्हें बेहतर इज्जतदार पत्नियों की भांति बेहतर बेटियां भी बनाते हैं। वो खुद को हमेशा हीन भावना से ग्रस्त पाती। उसे लगता गोया वो जिंदगी में मिलने वाले तमाम सुखों के लिए ही जन्मी है, लेकिन अपने घर की विपन्नता, खाली दीवारें, गंदी कुर्सियों और साधारण पर्दों के कारण वो व्यथित रहती थी। कोई अन्य सामान्य स्त्री होती तो वो इन सामानों पर खास ध्यान नहीं देती और ना ही खुद को इस प्रकार से व्यथित बनाए रखती। जिसने भी उसके छोटे से घर का निर्माण किया था वो उसके विषय में सोच सोच कर क्रोध से भर उठती थी। तमाम दिन वो लुभावने दिवा स्वप्नों में मग्न रहती। वो देखा करती बड़े और विशाल का एक कक्ष जिसमें पुराने विख्यात चित्रकारों की बड़ी बड़ी कृतियां लटकी हुई हैं, बड़े बड़े आकर्षक फानूसों से रोशन यंत्रों से गर्माते हुए कक्ष की उष्णता में वो नींद ले रही है। उसके वृहद कक्ष रेशम के लंबे व मूल्यवान भारी पर्दों, कलात्मक और आकर्षक फर्नीचरों से सजे हुए हैं, जिनमें छोटे छोटे महकते उपकक्ष हैं जिनमें बैठकर वो शाम के 5 बजे ऐसे विशिष्ट लोगों से बात करे जो अपने क्षेत्र में विख्यात हों और जिनके पीछे लड़कियां दीवानी हों, उनसे मिलने की इच्छा रखती हों। वो भोजन की गोल मेज पर, जिसका मेजपोश पिछले 3 दिनों से बदला नहीं गया था, अपने पति के सामने बैठी थी। उसके पति ने उस पर पड़े धब्बों को छिपाते हुए कहा, डियर, मैं इसे बेहतर नहीं मानता कि, और तब फिर से वो अगले ही पल कल्पना में डूब गई। वो सोचने लगी, सुंदर आकर्षक नक्काशीयुक्त तश्तरियों में परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों के बारे में, गुलाबी छटायुक्त चिकन गोश्त और आमंत्रित अतिथियों की सरगोशियों के बारे में वो विचार करने लगी। उसके पास न बढ़िया फ्रॉक था और ना ही बढ़िया आभूषण। वो महज उन्हीं वस्तुओं से प्रेम करती थी। उसे प्रतीत होता था कि उसका जन्म ऐसी ही वस्तुओं के इस्तेमाल के लिए हुआ है। उसे तीव्र उत्कंठा थी कि अनेक लोग उससे मिलें, बातें करें, उसे खुश रखें और वो सदैव प्रसन्न चित, खुश और जवान बनी रहे। उसकी एक रईस सहेली थी जो बचपन से ही उसकी सहपाठी थी, लेकिन जिससे वो मिलना कदापि पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी वो उससे मिलकर लौटती तो तमाम दिन वो अपने जीवन में व्याप्त दुख, वेदना और अपनी कमियों को सोच सोच कर रोती बिलखती रहती थी। एक संध्या उसका पति हाथ में एक लिफाफा थामे प्रसन्नता से घर लौटा। देखो, वो बड़े उमंग से बोला, देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उसने शीघ्रता से लिफाफा खोला, फिर एक छपा हुआ निमंत्रण पत्र निकाला जिसमें लिखे शब्द थे, सोमवार दिनांक 18 जनवरी को शिक्षा मंत्री एवं उनकी धर्म पत्नी अपने आवास पर मिस्टर एंड मिसेस लॉजेल को डांस और भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसा कि उसके पति ने कल्पना की थी, उसके सर्वथा खिलाफ बड़ी हिकारत से वो आमंत्रण पत्र मेज पर फेंकते हुए वो बुदबुदाई, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि ये सब मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है? किंतु डियर, मैं तो समझ रहा था कि ये निमंत्रण तुम्हें खुश कर देगा। तुम कभी बाहर नहीं जाती हो और ये अवसर है, सुनहरा अवसर, और मुझे मुझे इसे प्राप्त करने में बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी हैं। प्रत्येक शख्स ये निमंत्रण प्राप्त करना चाह रहा था, किंतु ये बहुत ही निजी विशिष्ट लोगों को ही दिया गया। वहीं काम करने वाले लोगों तक को नहीं मिला। तुम वहां हमारे विभाग के तमाम लोगों को देख सकोगी, सबसे मिल सकोगी। उसने उलाहना देती नजर से देखा और अधीरता से कहा, तुम क्या सोचते हो? क्या मैं वहां ऐसे ऐसे कपड़ों में जाऊंगी? उसने इस विषय पर कभी विचार ही नहीं किया था। उसने दिलासा दी, क्यों, थिएटर जाते वक्त जो पोशाक तुम पहनती हो उसमें तो तुम बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगती हो। वो अपनी पत्नी के आंसू देखकर उलझन में पड़ गया। आंखों की कोर से दो बड़े बड़े आंसू उसके अधरों पर गिर पड़े। वो बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार बोल पाया,
क्या बात है, आखिर क्या बात है?
बड़ी मुश्किल से वो स्वयं को संभाल सकी। आंसुओं से भीगे गालों को पोंछते हुए उसने बड़ी मध्यम आवाज में जवाब दिया,
कुछ नहीं, मेरे पास पहनने के लिए सुंदर फ्रॉक नहीं है, इसलिए मैं इस अवसर पर नहीं जा सकूंगी। अच्छा होगा कि तुम ये निमंत्रण पत्र अपने किसी दोस्त को दे दो, जिसकी पत्नी के पास ऐसे अवसरों पर पहुंचने के लिए फ्रॉक हो, जो लोग ज्यादा धनवान हो, जिनके पास अच्छे वस्त्र हो।
वो उदास हो गया, फिर भी उसने कहा, अरे जरा ये तो सोचो मैथिल्ट, एक सुंदर कीमती पोशाक पर कितना खर्च होगा, जिसे हम कभी किसी और कार्य के लिए बचा सकते हैं। ये तो बहुत ही साधारण सी बात है। मैथिल्ट ने कुछ पल सोचा, फिर अपने पति एक असंचयी सामान्य स्टेनो की हैसियत का अंदाजा लगाते हुए उसने इतना खर्च करवाना चाहा जिसे कि उसका पति इनकार न कर सके। उसने संकोच के साथ कहा,
मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग 400 फ्रैंक्स में काम हो जाएगा।
कुछ समय के लिए वो उलझन में फंस गया, क्योंकि उसने तकरीबन इतनी ही राशि एक छोटी सी संदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी, ताकि वो आगे आने वाली गर्मी में अपने मित्रों के साथ किसी शिकारी दल में शरीक हो सके। फिर भी मन महसूस कर उसने उत्तर दिया,
ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दूंगा, लेकिन तुम किसी बेहतरीन पोशाक को सिलवाना। हाँ,
आखिरकार नृत्य का दिन करीब आ ही गया। मैडम लोजेल अब भी उत्तेजित और उद्विग्न नजर आ रही थी। अंततः उसकी नई पोशाक तकरीबन तैयार हो गई। एक शाम उसके पति ने पूछा,
क्या हो गया है तुम्हें? तुम 2-3 दिन से कुछ अनमनी सी लग रही हो, तुम्हारा व्यवहार भी अजीब सा है।
किसी प्रकार उसने जवाब दिया,
सच में मैं बहुत परेशान हूं कि मेरे पास एक भी गहना नहीं है, खुद को सजाने के लिए एक भी नहीं। मैं इतने बड़े अवसर पर कितनी सूनी लगूंगी, इससे तो बेहतर होता कि मैं जाना स्वीकार ही नहीं करती।
उसने परामर्श दिया, अरे तुम कुछ ताजे फूल पहन लेना, इस मौसम में फूल बड़े खिले हुए रहते हैं, लगभग 10 फ्रैंक में तुम 2-3 अच्छे गुलाब तो ले ही आओगी। लेकिन वो रजामंद नहीं हुई।
नहीं नहीं, उसने जवाब दिया, क्या ये बेहद ठेस लगने वाली बात नहीं होगी कि मैं रईस बड़े बड़े लोगों की स्त्रियों के बीच में ऐसी सूनी सूनी लगूं?
इस पर उसका पति चीख उठा,
हम भी कितने मूर्ख हैं। ठीक है, तुम अपनी मित्र मैडम फॉरेस्टियर के घर चली जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें अपने गहने थोड़ी देर के लिए उधार दे दें, बस बस इस अवसर के लिए। तुम्हारी तो उनसे गहरी दोस्ती है ना?
वो एक नई उम्मीद से झूम उठी, हाँ ये वाकई अच्छा विकल्प है,
अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था।
अगले ही दिन वो अपनी सहेली के घर पहुंच गई और उससे अपनी समस्या कह सुनाई। मैडम फॉरेस्टियर सब कुछ जानकर अपने शीशे की अलमारी के करीब पहुंची, उसमें से जेवर का एक बड़ा सा डिब्बा निकाल लाई और अपनी सहेली के समक्ष उसे खोलकर बड़े लगाव से कह उठी, इसमें से जो कुछ भी रखना है तुम रख सकती हो माय डियर। सबसे पहले उसने कंगन देखे, फिर मोतियों का हार। उसने उन तमाम आभूषणों को पहन पहन कर खुद को शीशे में देखा। वो सामंजस्य में थी, ना तो वो कुछ ले पाने की स्थिति में थी, ना ही कुछ छोड़ सकने की स्थिति में। तब उसने पूछा, क्या इनके अलावा भी और कोई जेवर हैं तुम्हारे पास?
ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। हाँ, तुम खुद ही देख लो, मैं कह नहीं सकती तुम्हें क्या अच्छा लगेगा।
मैडम लोजेल ने काले रेशम के एक डिब्बे में लिपटा एक अनोखा हीरों का हार देखा। लालच से उसका हृदय धड़कने लगा। जैसे ही उसने उसे उठाया, प्रसन्नता से उसके हाथ फड़फड़ाने लगे। अपनी पोशाक के ऊपर उसने उसे गले पर लगा कर देखा, वो पगला गई, खोस ही गई। आखिर में बेहद सकुचाहट के साथ उसने पूछा, क्या ये हार उधार दे सकती हैं? महज यही बस।
ऑफ कोर्स, जरूर, तुम इसे खुशी से ले जा सकती हो।
वो मारे उत्तेजना और प्रसन्नता से अपने मित्र को गले से लगा बैठी और फिर अनोखे उपहार के साथ वापस लौट आई। नृत्य का तय दिन भी आ गया। मैडम लोजेल को वो नृत्य बेहद पसंद आया। नृत्य हुआ भी। वहां मौजूद तमाम मेहमानों में वो सर्वाधिक आकर्षक, प्रसन्नचित और प्रफुल्लित लग रही थी। प्रत्येक शख्स ने उसे देखा, उसका नाम पूछा और उससे भेंट करने की इच्छा जाहिर की। मंत्रिमंडल के हर सदस्य ने उसके साथ नृत्य करने की इच्छा प्रकट की। खुद शिक्षा मंत्री ने निजी रूप से उस पर ध्यान दिया। अपनी खूबसूरती की विजय श्री के प्रतीक स्वरूप अपनी अनोखी कामयाबी पर वो एक उड़ते हुए खुशी के बादल के समान थी। अपनी तमाम प्रिय भावनाओं में निमग्न, बेहद उत्साह से वो नृत्य करने लगी। वे लगभग 4 बजे सुबह घर लौटे। उत्सव के वक्त उसका पति एक कोने में आधी रात के बाद अध जगा अलसाया सा 3 दूसरे आदमियों के साथ बैठा था, जिनकी पत्नियां भी अपने आप में खोई हुई थीं। रोज के सामान्य वस्त्रों पर उसने साधारण सा ओवरकोट डाल रखा था। मैडम लोजेल ने इस स्थिति को समझ लिया कि दूसरी स्त्रियां जो मूल्यवान वस्त्रों में अटी पड़ी थीं, कहीं उसकी सही स्थिति को ना पहचान लें। उसने लौटने में शीघ्रता की। मिस्टर लोजेल ने उसे प्यार से रोक लिया।
अरे जरा रुको तो, बाहर लौटने में तुम्हें सर्दी लग जाएगी, मैं कोई वाहन बुला लेता हूं।
किंतु उसने ये सब नहीं सुना और शीघ्रता से सीढ़ियां उतर गई। जब वे सड़क पर थे तो उन्हें कोई वाहन नहीं मिल पाया। वे इंतजार करने लगे। तभी दूर से जाते हुए एक वाहन के कोचवान ने उनको आवाज लगाई। ठंड से कांपते, रात के जागे थके, वे फुटपाथ पर अग्रसर हो गए। आखिरकार अगले चौराहे पर उन्हें साधन मिल गया। थके हारे वे किसी प्रकार अपने घर पहुंचे और अब उन्हें शांति और सुकून मिल रहा था। उसके पति को याद आया कि उसे सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचना है। इस अभूतपूर्व मौके की कामयाबी के नशे में चूर, अपनी खूबसूरती को आखिरी बार देखने की गरज से आईने के सम्मुख खड़ी होकर उसने अपना ओवरकोट उतारा।
तभी एक चीख उसके कंठ से फूट पड़ी। उसका अनमोल खूबसूरत हार गले से गायब था।
उसका पति, जो आधे वस्त्र उतार चुका था, उसने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? वो शीघ्रता से उसकी तरफ पलट कर बोली, मेरे पास मैडम फॉस्टियर का हार नहीं है। उसे यकीन नहीं हुआ।
क्या, ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है।
उसके बाद उसने अपने वस्त्रों की तह में, आलों में, जेबों में, प्रत्येक जगह हार को ढूंढ मारा, लेकिन वे उसे नहीं पा सके। उसने दोबारा पूछा,
तुम्हें भली प्रकार याद है ना कि लौटने से पूर्व तुम उसे पहने हुए थी? हाँ हाँ, मुझे मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम मंत्री के आवास से बाहर आए थे तो मैंने उस हार को अपने गले में महसूस किया था।
लेकिन अगर वो रास्ते में गिरा होता तो गिरने की आवाज जरूर आती।
हो सकता है कि वो गाड़ी में रह गया हो।
हाँ, ये भी मुमकिन है। तुमने गाड़ी का नंबर देखा था?
नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और तुमने पढ़ा था क्या?
नहीं।
वे परस्पर एक दूसरे के बुझे हुए चेहरे को निहार रहे थे। आखिर में मिस्टर लोजेल ने दोबारा वस्त्र पहने।
मैं जा रहा हूं,
वो बोला।
जिस फुटपाथ पर हम पैदल चले थे मैं वहां देखने जा रहा हूं, हो सकता है कहीं पड़ा मिल जाए।
वो चला गया। मिसेस लोजेल रात के कपड़ों में सन्न बैठी रह गई। उसमें अब बिस्तर तक भी जाने का हौसला नहीं रह गया था। वो बिना सोचे, बिना किसी भाव के, बिना कोशिश किए करीब रखी आराम कुर्सी पर लुढ़क गई। 7 बजे सुबह के करीब उसका पति दोबारा लौट आया। उसे हार नहीं मिला था। वो पुलिस के दफ्तर में गया, वाहन कार्यालय में गया, अखबार में इश्तेहार दिया कि हार लौटाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। यानी उन्होंने वो तमाम कोशिशें की जिनसे उन्हें हार मिलने की जरा भी उम्मीद हो सकती। इस भयावह दुर्घटना के बाद वो तमाम दिन गुमसुम और खामोश बैठी रही। संध्या को लोजेल कार्यालय से थका मांदा मुंह लटकाए घर लौट आया। हार अब तक नहीं मिला था। वो बोला,
अब बेहद आवश्यक हो गया है कि तुम अपने मित्र को लिख दो कि गलती से उस हार का ना कुंडा उखड़ गया है और तुम उसे ठीक करवाकर जल्दी ही लौटा दोगी। इस प्रकार हमें संगीन स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ और वक्त मिल जाएगा।
उसके पति ने जिस प्रकार लिखवाया था वैसा ही उसने अक्षरशः अपनी पुरानी सहेली को लिख दिया। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने हौसला खो दिया। वे तमाम उम्मीदें हार चुके थे। लोजेल ने परामर्श दिया, हिम्मत बंधाई।
इस हार को लौटाने के लिए हमें कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा।
अगले दिन उन्होंने उस डिब्बे को खोला जिसमें वो हार आया था। उस पर जौहरी की दुकान का पता लिखा था। उसे पढ़कर वे उस दुकान पर गए। उसने अपनी बिक्री के पुस्तकें देखकर कहा,
ये हार हमारे दुकान से तो नहीं बेचा गया है। मैंने तो महज उसे रखने के लिए डिब्बा ही भर दिया था।
उसके पश्चात वे एक एक करके कई सुनारों और दुकानों पर गए और अपनी याद के अनुसार वैसे ही हार की मांग की। आखिर में हताश और थकान के कारण दोनों की हिम्मत जाती रही। पैलेस रॉयल की दुकान पर उन्हें हीरों का एक हार एकदम वैसा ही लगा जैसा उनके हाथों से खो चुका था। उसकी कीमत लगभग 40,000 फ्रैंक थी। अधिकतम रियायत करके वो 36,000 फ्रैंक में उसे प्राप्त कर सकते थे। लोजेल के पास इसकी आधी रकम थी जो उसके पिता ने वसीयत के रूप में छोड़ रखी थी। शेष रकम उसने उधार से प्राप्त की। किसी से 1,000 मांगे, किसी से 500। उसने हर एक से प्रार्थना की, सभी को कर्ज शीघ्र अदा करने का भरोसा भी दिया और जहां तहां से ब्याज पर धन प्राप्त हो सकता था उन सभी साहूकारों तक से उधार लिया। पूरा जोर लगाकर धन का प्रबंध किया। इस प्रकार से हस्ताक्षर कर खुद को गिरवी रख दिया बिना ये सोचे कि वो उसे अदा भी कर सकते हैं या नहीं। भावी स्याह चिंताओं से युक्त, आने वाली परेशानियों से त्रस्त, अपने पेट को काटकर अपनी मानसिक अवस्था को काबू करके लोजेल दंपत्ति ने जौहरी की दुकान पर हार की पूरी कीमत जमा कर हीरों का नया हार पाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। जब मैडम लोजेल ने मैडम फॉरेस्टियर को हीरों का हार लौटाया तो उसने थोड़े व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हें इसे मुझे जल्दी लौटाना चाहिए था। अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ जाती तो। उसने वो नया डब्बा खोला जिसके लिए श्रीमती लोजेल डर रही थी कि नए हार को देखकर वो जाने क्या सोचेगी, क्या कहेगी। उसे संदेह तो नहीं हो गया कि मैंने असली पुराना हार चोरी कर लिया है या बदल कर नया उसमें रख दिया है। मैडम लोजेल ने अब अपनी जरूरतों में होने वाली कमी की वास्तविक स्थिति का एहसास भी किया, किंतु उसने बेहद धैर्य और बहादुरी से स्थिति का सामना किया।
वो अथाह कर्ज उसे उन सभी को किसी प्रकार लौटाना जरूरी था। वो उसे अवश्य लौटाएगी और शीघ्र ही सबका उधार चुकता कर देगी। उसने अपनी नौकरानी हटा दी, कम किराए वाला मकान लिया और उस नए मकान के भी अन्य कक्ष किराए पर दूसरों को दे दिए। उसने गृहस्थी की सभी चीजों में किफायत करना सीखा। खाना बनाने का काम वो खुद करने लगी। रेशम के कपड़े, मेजपोश, पर्दे, शमीज और तमाम वस्त्र वो खुद अपने हाथों से धोती, खुद सुखाती। उसने पानी लाने वाली की भी छुट्टी कर दी और खुद नीचे सड़क पर उतरकर प्रत्येक सुबह स्वयं पानी भरने लगी। जीने के प्रत्येक मोड़ पर सांस के लिए वो रुका करती। उसने सामान्य लोगों की पत्नियों की भांति वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। खुद अपने हाथों से डलिया उठाए, किराने वाले, मांस वाले और फल बेचने वालों की दुकान पर जाने लगी ताकि अपनी सीमित पूंजी का एक एक पैसा बचाया जा सके। पति किसी व्यापारी के खातों को ठीक करने के लिए अतिरिक्त कार्य करता और रात में अक्सर 5 सिक्के प्रति पृष्ठ की दर से नकल का कार्य भी करता। इस तरह उसकी शारीरिक प्रवृत्ति ऐसी मजबूत कार्य करने वाली परिश्रमी महिला की तरह हो गई। उसके बाल ढंग से सवारे नहीं गए, उसकी पोशाक भी मटमैली हो गई थी, उसके हाथ खुरदुरे हुए, आवाज से भी वो कुछ कर्कशा हो गई। अपने घर का फर्श वो खुद धोया करती, किंतु कभी कभार जब पति कार्यालय में होता तो वो खामोश उदास होकर खिड़की के पास बैठ जाती और उस नृत्य की शाम को स्मरण करती। यदि वो हीरों का हार नहीं खोती तो क्या होता? कौन जानता था, कौन जानता है, जीवन कितना विचित्र, अनिश्चित और परिवर्तनशील है। कोई मामूली बात भी किसी की जिंदगी को कितना संवार या बिगाड़ सकती है। एक रविवार को जब वे हफ्ते भर की थकान दूर करने के लिए शॉम्स एलिसे में घूम रहे थे, अचानक उन्हें एक स्त्री की झलक मिली जो एक बच्चे के साथ जा रही थी। वो मैडम फॉरेस्टियर थी, जो अब भी पूरी तरह युवा, आकर्षक और हसीन लग रही थी। मैडम लोजेल सोच में पड़ गई, वो उससे बातचीत करे या ना करे। फिर उसने बोलने का निश्चय किया, क्योंकि हार की कीमत तो वो अदा कर ही चुकी थी। उसने सोचा कि वो इस बारे में चर्चा करेगी, क्यों नहीं। जब वो उसके करीब गई तो उसने कहा, जेनी, हेलो। दूसरी स्त्री चकित रह गई और मिसेस लोजेल को कतई नहीं पहचाना। लेकिन मैडम, मैं आपको नहीं पहचानती, आपसे शायद कोई गलती हुई है। नहीं नहीं, मैं लोजेल हूँ। सहेली के मुख से एक आह निकली। ओह माय गॉड, माय फ्रेंड लोजेल, ये तुम्हारी कैसी स्थिति हो गई है? हाँ, जब मैं तुमसे मिली उसके बाद हमारे कुछ दिन बेहद बुरे गुजरे थे और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है।
What? मेरे कारण? किस तरह?
तुम्हें उस हीरों के हार की तो याद होगी ना, जिसे तुमने मुझे मंत्री के घर पहनकर जाने के लिए दिया था, एक रात के लिए उधार।
ऑफ कोर्स, हाँ हाँ, वो तो मुझे याद है।
हाँ, वही हार मुझसे वास्तव में खो गया था।
हाँ, वो कैसे? वो तो तुमने मुझे वापस कर दिया था।
नहीं, मैंने वो नहीं, ठीक वैसा ही दूसरा हार लौटाया था और उसकी कीमत पूरी करने के लिए हमने अपनी जिंदगी के 10 साल गिरवी रख दिए। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि हमारे लिए वो वक्त कितना कठिन था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मैं खुश हूं, मेरा पूरा दायित्व, मेरी जिम्मेदारी सब पूरा हो गया।
मैडम फॉरेस्टियर कुछ देर के लिए रुकी और फिर बोली,
तुम कह रही हो कि तुमने मेरे हार के बदले में हीरों का नया हार खरीद कर मुझे दिया था?
हाँ, उस वक्त तुम पहचान नहीं सकी, वो एकदम पहले वाले हार जैसा ही था।
इतना कहकर मिसेस लोजेल
गर्व से निश्चिंत होकर धीरे से मुस्कुराई। ये सब सुनकर मैडम फॉरेस्टियर को बड़ा धक्का सा लगा। उसने बेहद करुणा से सामने वाली के दोनों हाथ पकड़ लिए। ओ माय फ्रेंड, ओ मेरी प्यारी दोस्त, ओ गॉड, मेरे हीरों का हार तो नकली था और उसकी कीमत कोई 500 फ्रैंक से ज्यादा नहीं थी। फिर ओ गॉड, फिर ऐसा तुमने क्यों किया? आप सुन रहे थे कहानी परिवर्तन और इसे लिखा था गीता मोपासा ने। गाथा के प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक इसे पहुंचाया नयनी दीक्षित ने।